ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र
मित्र भेद की अगली कहानी है घमंडी मछली, जो कि पिछली कहानी में टिटहरी सुना रही है। किसी तालाब में तीन मछलियां अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य रहती थीं। एक दिन उस तालाब को देखकर मछुआरों ने कहा, अहो इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, हमने कभी इसकी खोजी नहीं की, इसलिए आज तो भोजन हो चुका और शाम भी हो गई, सवेरे हम यहाँ जरूर आएंगे ये तय है। वज्रपात के समान उनकी बात को सुनकर अनागत विधाता सारी मछलियों को बुलाकर बोला, अहो सुना आपने जो मछुआरों ने अभी कहा है, इसीलिए हम रात में ही किसी पास के तालाब में भाग चलें। कहा भी है, असमर्थों को बलवान शत्रुओं के पास से भाग जाना अथवा किसी किले में जाकर छिप जाना चाहिए, उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है। सवेरे मछुआरे यहाँ आकर सारी मछलियों को जरूर नष्ट कर देंगे, ये मेरा मन कह रहा है, अब क्षण भर भी यहाँ रहना ठीक नहीं। कहा भी है, जिनके लिए किसी दूसरी जगह सुखदायक स्थान विद्यमान रहता है, वे विद्वान मरने और कुलक्षय को नहीं देखते। ये सुनकर प्रत्युत्पन्नमति बोली, अहो आपने सच कहा, मुझको भी यही लग रहा है, इसलिए हमें किसी दूसरी जगह चले ही जाना चाहिए। कहा भी है, परदेश से डर के कारण बहुत ममता वाले नपुंसक कौवा कायर और हिरन अपने देश में ही मर जाते हैं, जिसकी सर्वत्र गति है वो अपने देश के मोह से क्यों नष्ट होता है, ये मेरे पिता का कुआं है, ऐसा सोचकर खारे पानी को कायर पुरुष ही पीते हैं। ये बात सुनकर यद भविष्य ऊंचे स्वर से हंसकर बोला, अहो आपने अच्छी सलाह नहीं दी, क्या पिता पितामह आदि का ये तालाब त्याग देना चाहिए, यदि आयु बीत ही चुकी है तो किसी दूसरी जगह जाकर भी मृत्यु हो जाएगी। कहा भी है, अरक्षित यानी जिसकी रक्षा नहीं की जाती हो, अरक्षित प्राणी भी देव से रक्षित होकर बचा रहता है, किंतु देव का मारा हुआ प्राणी सुरक्षित रहकर भी नष्ट हो ही जाता है। जंगल में त्यागा अनाथ बालक जिंदा बच जाता है और कोशिश करने पर भी घर में जिंदा नहीं रहता, इसलिए मैं तो दूसरी जगह नहीं जाऊंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करें। उसका ये निश्चय जानकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति अपने परिवार सहित वहां से चले गए। सुबह मछुआरों ने जाल से उस तालाब को छानकर यद भविष्य के साथ साथ तालाब की सारी मछलियां मार दी, इसीलिए मैं कहता हूँ अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति आदि। ये सुनकर टिटिब बोला, भद्रे क्या तुम मुझे यद भविष्य के समान मूर्ख समझती हो, अब तुम मेरी बुद्धि का प्रभाव देखो, इस दुष्ट समुद्र को मैं अपनी चोंच से सोख लेता हूँ। टिटहरी बोली, अरे समुद्र से तुम्हारी कैसी लड़ाई, इस पर क्रोध करना ठीक नहीं है। कहा भी है, असमर्थ पुरुषों का क्रोध अपने ही नाश का कारण बन जाता है, अत्यधिक जलती हुई भट्टी अपने निकट की ही वस्तु को जलाती है, और भी जो अपनी और शत्रु की शक्ति को बिना जाने उत्सुकतावश उसका सामना करता है, वो आग में पड़े पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। टिटिब बोला, प्रिय ऐसा मत कहो, जिनमें उत्साह शक्ति होती है वे कम पराक्रमी होते हुए भी बड़ों बड़ों पर आक्रमण कर देते हैं। कहा तो है, कुपित व्यक्ति विशेष करके परिपूर्ण शत्रु के ही सामने जाते हैं, जिसे राहु अब तक चंद्रमा का सामना करता है, और भी प्रमाण से भी अधिक बड़े और गंड स्थल यानी कनपट्टी से शाम मत त्यागने वाले मतवाले हाथी के मस्तक पर ही सिंह अपने पैर रखता है। वैसे ही सूर्य की पहली किरणें पर्वतों के ऊपर गिरती हैं, तेज के साथ उत्पन्न पुरुषों की अवस्था नहीं देखी जाती। हाथी बहुत बड़ा होता है, वो अंकुश के वश में रहता है, तो क्या अंकुश हाथी के समान बड़ा होता है? दीपक के जलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, तो क्या दीपक अंधकार की तरह बड़ा होता है? वज्र से सैकड़ों पर्वत गिर जाते हैं, तो क्या वज्र पर्वत के बराबर होती है? जिनमें तेज है वही बलवान है, मोटे शरीर वालों का क्या भरोसा, इसलिए मैं अपनी चोंच से समुद्र का सारा पानी सुखा डालूंगा। टिटिबी बोली, जहाँ गंगा 900 नदियों को साथ लेकर हमेशा प्रवेश करती है तथा सिंधु नदी भी उसी में मिलती है, इसलिए किस प्रकार तुम 1800 नदियों से पूर्ण उस समुद्र को कंकड़ को उठाने वाली अपनी चोंच से सोख लोगे, इन बातों को कहने से क्या लाभ? टिटिब बोला, प्रिय हताश न होना ही लक्ष्मी का मूल है, मेरी चोंच लोहे के समान है और दिन रात का समय लंबा होता है, तब भी क्या समुद्र नहीं सूखेगा? दूसरे का हिस्सा बहुत कठिनाई से तभी तक मिलता है जब तक कि पुरुष पुरुषार्थ नहीं करता, तिल संक्रांति को प्राप्त सूर्य भी बादलों के समूह को जीत लेता है। टिटभी बोली, यदि तुम समुद्र से दुश्मनी जरूर करना चाहते हो तो दूसरे पक्षियों को बुलाकर उन सज्जनों के साथ ऐसा करो। कहा भी है, बहुत से कमजोरों का समूह भी दुर्जेय हो जाता है। दुर्जेय मतलब जिस पर विजय पाना कठिन हो। तिनकों से बनी हुई रस्सी से हाथी भी बांध लिए जाते हैं। और भी, कठफोड़वा, गौरैया, मेंढक तथा मक्खी रूपी महाजनों के विरोध से हाथी नष्ट हो गया था। टिटिप बोला, वो कैसे? वो कहने लगी, अगली कहानी, गौरैया और मतवाला हाथी।
पंचतंत्र।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।